सुनो कहानी श्रृंखला में हम विभिन्न भाषाओं की अनुदित कहानियां यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। पहली कड़ी में आपके लिए एक बहुत ही मार्मिक और सुंदर कहानी है। यह विश्व के महानतम साहित्यकार श्री अंतोन चेखव की कहानी है। अंतोन चेखव एक रशियन नाटककार और कहानीकार हैं, जिन्हें संसार के महानतम कथाकारों में गिना गया है। पेशे से डॉक्टर चेखव शुरुआती दौर में आर्थिक उन्नति के लिए लिखते रहे, लेकिन धीरे धीरे उनकी कहानियों में मनुष्य के भावों और प्रवृत्तियों का इतना सुंदर वर्णन हुआ कि उन्हें सर्वश्रेष्ठ कथाकारों में गिना जाने लगा। उन्होंने छोटी छोटी रोजमर्रा की बातों को, जिंदगी के छोटे छोटे दर्द को इतनी बारीकी से अपनी कहानियों में पिरोया है कि सुनने वाला उस दर्द को बहुत गहराई तक महसूस करता है। तो आइए सुनते हैं अंतोन चेखव की एक मार्मिक कहानी दुख। इसका हिंदी अनुवाद सुशांत सुप्रिय जी ने किया है और स्वर डॉक्टर स्वाति तिवारी का। दुख। मैं अपना दुखड़ा किसे सुनाऊं? शाम के धुंधलके का समय है। सड़क के खंभों की रोशनी के चारों ओर बर्फ की एक गीली और मोटी परत धीरे धीरे फैलती जा रही है। बर्फबारी के कारण कोचवान योना पोतापो किसी सफेद प्रेत सा दिखने लगा है। आदमी की देह जितनी भी मुड़ सकती है, जितनी भी मुड़कर एक हो सकती है, उतनी ही उसने कर रखी है। वह अपनी घोड़ागाड़ी पर चुपचाप बिना हिले डुले बैठा हुआ है। बर्फ से ढका हुआ उसका छोटा सा घोड़ा भी अब पूरी तरह से सफेद दिख रहा है। वह भी बिना हिले डुले खड़ा है। उसकी स्थिरता, दुबली पतली काया और लकड़ी की तरह तनी हुई सीधी टांगे ऐसा आभास दे रही हैं जैसे वह कोई सस्ता सा मरियल लकड़ी का घोड़ा हो। योना और उसका छोटा सा घोड़ा दोनों ही बहुत देर से अपनी जगह से हिले नहीं हैं। वे खाने के समय से बहुत पहले अपने बाड़े से निकल आए थे, पर अभी तक उन्हें कोई सवारी नहीं मिली थी। ओ गाड़ी वाले, विबोर्ग चलोगे क्या? योना अचानक सुनता है। विबोर्ग? हड़बड़ाहट में वह अपनी जगह से उछल जाता है। अपनी आंखों पर जमा हो रही बर्फ के बीच में वह धूसर रंग के कोट में एक अफसर को देखता है, जिसके सिर पर उसकी टोपी चमक रही है। विबोर्ग, अफसर एक बार फिर पूछता है। अरे सो रहे हो क्या? मुझे विबोर्ग जाना है। चलने की तैयारी में योना घोड़े की लगाम खींचता है। घोड़े की गर्दन और पीठ पर पड़ी बर्फ की परतें नीचे गिर जाती हैं। अफसर पीछे बैठ जाता है। कोचवान घोड़े को पुचकारते हुए उसे आगे बढ़ने का आदेश देता है। घोड़ा पहले अपनी गर्दन सीधी करता है, फिर लकड़ी की तरह सख्त दिख रही अपनी टांगों को मोड़ता है और अंत में अपनी अनिश्चयी शैली में आगे बढ़ना शुरू कर देता है। योना ज्यों ही घोड़ा गाड़ी आगे बढ़ाता है, अंधेरे में आ जा रही भीड़ में से उसे आवाज आती है। अबे क्या देख रहा है? जानवर कहीं का? अरे इसे कहाँ ले जा रहा है मूर्ख? दाएं मोड़। तुम्हें तो गाड़ी चलाना भी नहीं आता, दाहिनी ओर रहो भाई। पीछे बैठा अफसर थोड़ा गुस्से में चीखता है, फिर रुककर थोड़े संयत स्वर में वह कहता है, कितने बदमाश हैं सब के सब। और मजाक करने की कोशिश करते हुए वो आगे कहता है, लगता है सबने कसम खा ली है आज, तुम्हें धकेलना है या फिर तुम्हारे घोड़े के नीचे आकर ही दम लेना है। कोचवान योना मुड़कर अफसर की ओर देखता है। उसके होंठ जरा सा हिलते हैं, शायद वह कुछ कहना चाहता है। क्या कहना चाहते हो तुम? अफसर उससे पूछता है। योना जबरदस्ती अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट ले आता है और कोशिश करके अपनी फटी हुई आवाज में रुक कर कहता है, साहब मेरा इकलौता बेटा बारिन इस हफ्ते गुजर गया साहब। अच्छा, कैसे मर गया वह? योना अपनी सवारी की ओर पूरी तरह मुड़कर बोलता है, क्या कहूँ साहब, डॉक्टर तो कह रहे थे कि सिर्फ तेज बुखार था। बेचारा बच्चा 3 दिन तक अस्पताल में पड़ा तड़फता रहा और फिर हमें छोड़कर चला गया साहब। भगवान की मर्जी किसकी चलती है उसके आगे। अरे शैतान की औलाद, ठीक से मोड़, अंधेरे में कोई चिल्लाया। अबे ओ बुड्ढे, तेरी अकल क्या घास चरने गई है? अपनी आंखों से काम क्यों नहीं लेता? जरा तेज चलाओ भाई घोड़ा, और तेज करो, अफसर थोड़ा नाराजगी दिखाता है, नहीं तो हम तो कल सुबह तक नहीं पहुंच पाएंगे। जरा और तेज करो गाड़ी, कोचवान एक बार फिर अपनी गर्दन ठीक करता है, सीधा होकर बैठता है और रुखाई से अपना चाबुक हिलाता है। बीच बीच में वह कई बार पीछे मुड़कर अपनी सवारी की तरफ देखता है, लेकिन अफसर ने अब अपनी आंखें बंद कर ली हैं। जाहिर है वह इस समय कुछ भी सुनना नहीं चाहता। अफसर को विवोर को पहुँचा कर योना शराब खाने के पास गाड़ी खड़ी कर देता है और एक बार फिर रुकड़ो होकर सीट पर दुबक जाता है। ठंड बहुत कड़क है। 2 घंटे बीत जाते हैं, तभी फुटपाथ पर पतले रबड़ के जूतों को घिसने की चूं चूं ची 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 आवाज़ के साथ 3 लड़के लड़ते झगड़ते उसकी ओर आते हैं। उन किशोरों में से 2 लंबे और दुबले पतले हैं, जबकि तीसरा थोड़ा कुबड़ा और नाटा छोटा है। ओ गाड़ी वाले, पुलिस ब्रिज चलोगे क्या? कुबड़ा लड़का कर्कश आवाज में पूछता है। हम तुम्हें 20 कोपेक देंगे। योना घोड़े की लगाम खींचकर उसे आवाज लगाता है, जो कि चलने का निर्देश है। हालांकि इतनी दूरी के लिए 20 कोपेक ठीक भाड़ा नहीं है, बहुत कम है, पर 1 रूबल हो या 5 कोपेक अब उसे कोई इतराज नहीं, उसके लिए अब सब कुछ एक जैसा है। तीनों किशोर सीट पर एक साथ बैठने के लिए आपस में काफ़ी गाली गलौज धक्कम मुक्की करते हैं। बहुत सारी बहस और बदमिजाजी के बाद अंत में वे इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि कुबड़ा लड़का खड़ा रहेगा क्योंकि वह सबसे ठिंगना और छोटा है। ठीक है, अब तेज चलाओ, कुबड़ा लड़का नाक में बोलता है। वह अपनी जगह ले लेता है, जिससे उसकी सांसें योना की गर्दन पर पड़ती हैं। तुम्हारी ऐसी की तैसी, क्या सारे रास्ते तुम इसी तरह ढेंचू ढेंचू की रफ्तार में चलोगे? क्यों ना तुम्हारी गर्दन, कुबड़ा लड़का पीछे से बोल रहा है। दर्द के मारे मेरा तो सिर फटा जा रहा है, और यह है कि गाड़ी ढेंचू ढेंचू चला रहा है, लंबा लड़का कहता है। कल रात दुपमा सो के यहाँ मैंने और वास्का ने कोयांग की पूरी 4 बोतलें चढ़ा ली थी। कितनी? 4 बोतलें? मुझे समझ में नहीं आता कि तुम इतना झूठ क्यों बोलते हो, दूसरा लंबा लड़का कहता है। भगवान कसम सच कह रहा हूँ। हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम्हारी बात में उतनी ही सच्चाई है जितनी कि सुई की नोक में से ऊंट निकालने में हो सकती है। आप सब कितने मजाकिया हैं, योना आँखें से निपोर कर उनसे बातचीत करने की कोशिश करता है। अरे भाड़ में जाओ तुम, कुबड़ा क्रुद्ध हो जाता है। बुढ़ो तुम हमें कब तक पहुंचाओगे? इस तरह चलाओगे? यह कौन सा तरीका है गाड़ी चलाने का? अरे कभी चाबुक का भी इस्तेमाल कर लिया करो, जरा तेज चलाओ भाई, चाबुक भी चलाओ साथ साथ मियाँ, तुम आदमी हो या आदमी की दुम? योना यूं तो लोगों को देख रहा है, पर धीरे धीरे अकेलेपन का एक तीव्र एहसास उसे ग्रस्ता चला जा रहा है। कुबड़ा फिर से गालियां बकने लगता है। लंबे लड़कों ने किसी लड़की के बारे में बातचीत शुरू कर दी है। योना उनकी ओर कई बार मुड़कर देखता है। वह किसी क्षणिक चुप्पी की प्रतीक्षा के बाद मुड़कर बुदबुदाता है। मेरा बेटा इस हफ्ते गुजर गया। हम सबको एक दिन मरना है, क्या करें, गुजर गया तो। कुबड़े ने ठंडी सांस ली और खांसी के एक दौरे के बाद होंठ पहुंचे। अरे जरा जल्दी चलाओ भाई, खूब तेज। दोस्तों, मैं इस धीमी रफ्तार की गाड़ी में चलने को बिल्कुल तैयार नहीं था। आखिर इस तरह तो हम कब पहुंच पाएंगे? इससे तो हम पैदल ही चल लेते। अरे अपने इस घोड़े की गर्दन थोड़ी गुदगुदाओ भाई, नहीं तो चाबुक मारो। सुन लिया ना बुढ़े, ओ नरक के कीड़े, तुम्हारी गर्दन की हड्डियां तोड़ दूंगा अगर समय पर नहीं पहुंचा। तुम जैसों की खुशामद कर गाड़ी में बैठने से बेहतर है कि हमें पैदल ही चले जाना चाहिए था। सुन रहे हो बुढ़ाऊ, तुम पर कुछ असर भी है हमारी बातों का? योना इन शाब्दिक प्रहारों को सुन तो रहा है, पर अंदर से महसूस बिल्कुल नहीं कर रहा। वह हैं हैं करके हंसता है। क्या करे, हंसना उसकी मजबूरी है। अरे आप लोग साहब लोग हो, जवान हो, भगवान आपको हमेशा अच्छा रखे, आपका भला करे। बुढ़ऊ तुम क्या शादीशुदा हो? उनमें से एक लंबा लड़का अचानक पूछता है। मैं? साहब आप लोग मजाकिया हैं। अब बस मेरी बीवी ही तो है, वह अपनी आंखों से सारे दुख दर्द देख चुकी है। आप समझ गए ना मेरी बात? अब मौत बहुत दूर नहीं है, मेरा बेटा मर चुका है और मैं जिंदा हूँ। कैसी अजीब बात है यह, मौत गलत दरवाजे पर पहुँच गई। मेरे पास आने के बजाय मौत मेरे बेटे के पास चली गई। यूँ न पीछे मुड़कर बताना चाहता है उसका बेटा कैसे मरा, पर उसी समय कुबड़ा एक लंबी सांस खींच कर कहता है, शुक्रिया खुदा का कि हम पहुँच गए, आखिर मेरे साथियों इसने हमें पहुँचा दिया। योना उन सबको अंधेरे फाटक से धीरे धीरे गायब होते हुए देखता है। एक बार फिर वह खुद को बेहद अकेला महसूस करता है। सन्नाटे से घिरा हुआ उसका दुख जो थोड़ी देर के लिए कम हो गया था फिर लौट आता है, और इस बार वह और भी ताकत के साथ उसके हृदय को चीरता है। एक अजीब सी बेचैनी और एक पीड़ा को महसूस करता है। वह बेहद बेचैन है, क्या करे। बेहद बेचैनी में वह सड़क की भीड़ को देखता है, गोया ऐसा कोई आदमी तलाश कर रहा हो जो थोड़ी देर उसके पास बैठे और उसकी बात सुने। पर भीड़ उसकी मुसीबत की ओर ध्यान दिए बिना आगे बढ़ी चली जा रही है। किसी को उसके दुख की कहाँ पड़ी, उसका दुख जो उसके लिए असीम है। यदि उसका हृदय फट जाए तो उसका दुख बाहर निकल कर सारी पृथ्वी को भर देगा, सारी पृथ्वी को डुबो देगा, ऐसा उसे लगने लगता है। लेकिन फिर भी कोई उसकी ओर नहीं देखता। यूना को टाट लाते एक कूली दिखाई देता है, वह उसी से बात करने की सोचता है। वक्त क्या हुआ भाई, वह कूली से पूछता है। 9 से ज़्यादा बज चुके हैं। अरे तुम यहाँ किसका इंतजार कर रहे हो घोड़ी वाले, अब कोई फायदा नहीं है इस शहर में, लौट जाओ, अब कोई सवारी नहीं लेता। योना कुछ देर तक आगे बढ़ता रहता है, फिर उकड़ू हालत में अपने गम में डूब जाता है। वो समझ जाता है कि मदद के लिए लोगों की ओर देखना बेकार है। वह इस स्थिति को बहुत ज़्यादा देर तक सहन नहीं कर पाता और अस्तबल के बारे में सोचता है। उसका घोड़ा मानो उसका सब कुछ समझता है, उसका दुख उसका दर्द, और वह हल्की सी चाल में चलना शुरू कर देता है। लगभग 1.5 घंटे के बाद योना एक बहुत बड़े और गंदे से स्टोव के पास पहुंचता है। स्टोव के आसपास जमीन पर बेंचों पर बहुत सारे लोग सोए पड़े हैं, खर्राटे ले रहे हैं। हवा दमघोटू गर्मी से भारी है। योना सोए हुए लोगों की ओर देखते हुए खुद को खुजलाता है। उसे अफसोस होता है कि सब सो रहे हैं, वह इतनी जल्दी क्यों चला आया। आज तो मैं घोड़े का चारा देने जितना भी नहीं कमा पाया। वह एक दर्द भरी सांस लेता है। एक युवा कोचवान एक घोड़े कोने में पड़ा हुआ है, उसका घोड़ा उसके पास ही खड़ा है। वह उठकर बैठ जाता है, आधी नींद में बड़बड़ाता है, फिर पानी की बाल्टी की तरफ बढ़ता है। अरे तुम्हें पानी चाहिए, योना उससे पूछता है। यह भी कोई पूछने की बात है। अरे नहीं मेरे दोस्त, तुम्हारी सेहत बनी रहे। लेकिन क्या तुम जानते हो कि मेरा बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा, तुमने सुना उसके बारे में इसी हफ्ते अस्पताल में। बड़ी लंबी कहानी है मेरी। योना अपने कहे का असर देखना चाहता है, पर वहाँ कुछ नहीं देख पाता क्योंकि वह युवक अपना चेहरा कंबल में छुपाकर फिर गहरी नींद में सो गया था। बूढ़ा एक लंबी सांस लेकर अपना सिर फिर खुजलाता है। उसके बेटे को मरे 1 हफ्ता हो गया, लेकिन इस बारे में वह किसी को कुछ ठीक से नहीं बता पाया, किसी से बात नहीं कर पाया। बहुत धीरे धीरे बड़े ध्यान से वह यह सब बताना चाहता था। वह बताया जा सकता है कि कैसे उसका बेटा बीमार पड़ा, कैसे उसने दुख भोगा, मरने से पहले उसने क्या कहा और कैसे उसने अचानक दम तोड़ दिया। दफन के वक्त एक एक बात बताना भी तो वह जरूरी समझता है, और यह भी कि कैसे वह अस्पताल गया और उसने अस्पताल जाकर अपने बेटे के कपड़े लिए। उस समय उसकी बेटी अनीसिया भी उसी गांव में थी, उसके बारे में भी वह लोगों को बताना चाहता है। बताना जरूरी भी है, उसके पास बताने के लिए इतना कुछ है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। सुनने वाला जरूर एक लंबी सांस ले और उसके प्रति सहानुभूति जताए, ऐसी उसकी इच्छा है। औरतों से बात करना अच्छा होता है क्योंकि वे सुन लेती हैं, लेकिन वे बेवकूफ़ होती हैं ऐसा उसे लगता है, क्योंकि उन्हें रुला देने के लिए सिर्फ भावुकता के 2 शब्द भर कहो उसके बाद वे रोने लगती हैं। सोचते सोचते सोचता है कि चलूं अपने घोड़े को ही देख लूं। योना सोचता है और घोड़े की ओर बढ़ता है। सोने के बारे में भी क्या सोचना, सोने के लिए तो सारी उम्र पड़ी है। सोने का वक्त हमेशा रहेगा। वह अपना कोट पहनकर अस्तबल में अपने घोड़े के पास जाता है। साथ ही वह अनाज के बारे में, सूखी घास के बारे में, बदलते मौसम के बारे में भी सोचता है। नहीं सोचना चाहता वह तो अपने बेटे के बारे में, अपने अकेलेपन के बारे में सोचने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। क्या तुम डटकर खा रहे हो? योना अपने घोड़े को थपकारते हुए पूछता है। वह घोड़े की चमकती आंखों को देखकर कहता है, ठीक है, जमकर खाओ, खा लो। हालांकि आज हम अपना अनाज नहीं कमा सके, तुम्हारे लायक कुछ नहीं कमा सका, पर हम सूखी घास खा सकते हैं। हाँ, यह सच है, सूखी घास ही खा लो। मैं अब गाड़ी चलाने के लिए बूढ़ा हो गया हूँ ना, मेरा बेटा चला गया है। मेरा बेटा होता तो वह कितनी अच्छी गाड़ी चला सकता था। शानदार कोचवान था मेरा बेटा। काश काश वह जीवित होता। एक पल के लिए योना चुप हो जाता है, फिर अपनी बात जारी रखते हुए कहता है, हाँ मेरे प्यारे पुराने दोस्त, यही सच है। वह घोड़े की पीठ पर फिर हाथ फेरता है। कुज्जा योनिच अब नहीं रहा इस दुनिया में, वह हमें जीने के लिए छोड़कर चला गया है। सोचो जरा, अगर तुम्हारा एक बछड़ा होता, तुम उसकी माँ, और अचानक बछड़ा तुम्हें अपने बाद जीने के लिए छोड़कर चला जाता तो कितना दुख पहुंचता तुम्हें, है ना? समझो ना मेरे दर्द को, सुन रहे हो? घोड़ा अपने मालिक के हाथ पर सांस लेता है, उसकी बात सुनता है और उसके हाथ को चाटता है। चाट कर यह एहसास देता है कि उसने बात सुनी। अपने दुख के बोझ से दबा योना उस छोटे से घोड़े को अपने बेटे की सारी कहानी सुनाता जाता है। धन्यवाद। बहुत ही मार्मिक कहानी है यह। अपने बेटे को खो चुके एक व्यक्ति का दर्द है, लेकिन उस दर्द को बांटने वाला इस दुनिया में कोई नहीं मिलता। इस बात को बहुत ही मार्मिक तरीके से चेखव ने यहाँ पर प्रस्तुत किया है। धन्यवाद।